आपने लाहौरी नाश्ता करना है, आपको सैटरडे संडे जाना है, दो दिन के लिए अभी तक हमने नाश्ता ओपन किया हुआ है और दोनों दिनों में आपको बहुत मजा आएगा अगर आप फैमिली को, बच्चों को लेके जाएंगे और उनको बताएंगे भाई ये देखें, फूड देखें। मैं एक बहुत बड़ा नाम है हमारी कम्युनिटी का, उसने मुझे फोन करके थैंक यू किया, कहते हैं शाह साहब हमारे बच्चे जो है ना वो कैनेडियन बोर्न है और ऑलमोस्ट पाकिस्तान फूड छोड़ चुके थे और मैं आपके रेस्टोरेंट में एक बार आपके कहने पे ले गए अपने बच्चों को और वहां पे बच्चों ने इतना एंजॉय किया। अब आपके रेस्टोरेंट से हर सेकंड डे जो है हम ऑर्डर कर रहे हैं, हर सेकंड डे हम उसको कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं, जा रहे हैं और वीकेंड पे तो लाजमी जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा भी बहुत सारे लोग दोबारा जुड़ गए हैं और उन्होंने अगर वो पाकिस्तान फूड छोड़ा हुआ था अगर वो टेस्ट करेंगे हमारा ओपन माई कैफे इन कुजीन का तो दोबारा वो गारंटी कर रहा हूँ वो जुड़ जाएंगे दोबारा पाकिस्तान फूड के साथ। तो इसलिए आपको कॉल करना है 416-526-6800 और केटरिंग जो है माजिद भाई वो बहुत अच्छा पैकेज है हमारे पास। अगर आप चाहते हैं भी अच्छी केटरिंग, किसी मिनिमम 30 लोगों की अगर केटरिंग करानी है, बाकी तो आप वो डिलीवरी करा सकते हैं 10 बंदों की, 20 बंदों की, 5 बंदों की, वो डिलीवरी होती है उबर पे, वो सब जगहों पे होती है। लेकिन अगर आप केटरिंग स्पेशल ऑर्डर करना चाहते हैं तो जरूर ऑर्डर कीजिएगा। बहुत सारे बैंक्वेट हॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 30 लोगों से लेके 1000 लोगों तक आप केटरिंग ऑर्डर कर सकते हैं। 1000 अ डे आप, मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा हमारा सेटअप है, इतना बड़ा किचन है। आपको अगर कोई भी गैदरिंग है घर में, अगर आप गैदरिंग कर रहे हैं, कोई किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी हो रही है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, किसी का कुछ कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप केटरिंग ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप किसी बैंक्वेट हॉल में कर रहे हैं तब भी आप कह रहे हैं जी उनको भी हमने वहां से केटरिंग करानी है, वो भी हम डिलीवरी करा देंगे। अगर कोई ऑलरेडी बैंक्वेट हॉल बिजनेस में है, वो चाहता है भी आपको अच्छा टेस्ट, अपने जितने भी है आपके लोग हैं आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको अच्छा टेस्ट ट्राई कराना है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको गारंटी कर रहा हूं एक बार फिर आपको बहुत मजा आएगा।
416-526-6800 OMC का आप ये समझ लीजिए फोन नंबर है, 1310-1310 डंडा स्ट्रीट डंडास एंड डिक्सी के कॉर्नर पर। चाहिए साहब जाके लजीज खानों का ब्रेकफास्ट, खासतौर से कल और परसों सैटरडे संडे को आप पहुंचिए वहां पर और वहां जाके नाश्ते का भी एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर खान साहब,
थैंक यू भाई, ठीक है,
हाफिज। कोई स्पॉन्सर्स का पैगाम लेते हैं, पूरा में वापस आएंगे।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वालों एक सुनेहा, ब्रैम्पटन नु माण है शानदार कलाकारा समूहा ते संस्थावां दे जश्न मनाउण दा, जो कि मुफ्त ते दिलचस्प कला दे तजर्बे भाईचारे विच लियांदे हन। जेकर तुसी भी एक वर्कशॉप अजमाउण विच दिलचस्पी रखदे हो, जां फिर एक कलाकार गलबात विच शामिल होना चाहुंदे हो, जां फिर नवे हुनर नु सिखणा जां प्रदर्शन करना चाहुंदे हो, तां सभ्याचारक दिनां दौरान यानी कि 20 सितंबर तों 13 अक्टूबर तक हर एक अते हर उमर लई कुछ ना कुछ है। होर जानकारी लई brampton.ca/culturedays ते जाओ।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां मारने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੌਟ ਯੂ ਬਾਏ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटारियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु घटाउण लई नवीआं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। एह सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो। इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वल्लों कीती गई है।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ओंटेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660 quicktruckcube.com।
ब्रैम्पटन अग तो सुरक्षित रहो। 28 सितंबर नू अग सुरक्षा दे एक दिन लई कैसी कैंपबेल कम्युनिटी सेंटर विच सवेरे 10 बजे तो दोपहर 2 बजे तक साडे नाल जुड़ो अते फायर अलार्म दी जांच लई 50,000 वायदे सुरक्षित करन विच साडी मदद करो। फायर डिपार्टमेंट दे स्टाफ नू मिलो, जीवन बचाउण दे सुझाव सिखो अते ऑनलाइन जां व्यक्तिगत तौर ते अपना वायदा साडे नाल सांझा करो। ज्यादा जानकारी लई अज ही विजिट करो brampton.ca/savedbythebeep।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241
वेलकम बैक तमाम सामेईन को जो हमें 770 AM डायल पर सुन रहे हैं। प्रोग्राम साजो आवाज, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद, और हमारे साथ खट्टी मीठी खबरें लेकर, गर्मा गर्म और खट्टी मीठी दोनों खबरें लेकर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं शाजिया मलिक साहिबा। अब से लेकर तकरीबन 7:30 बजे तक हमारा और आपका सिलसिला रहेगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह गुजर रहे हैं जहां आपको रेडियो पे आवाज सही नहीं सुनाई दे रही है तो एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 6478724900 डायल करके आप हमें क्रिस्टल क्लियर आवाज हमारी सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com, यहां रेडियो सुन सकते हैं और टेलीविजन भी देख सकते हैं। हमारी कंप्लीट न्यूज आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा तमाम ही एडवर्टाइजर्स के नंबर भी आपको हमारी वेबसाइट eawaz.com पर मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल ई आवाज टीवी एंड रेडियो, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए, कॉमेंट करके बताइए कि आप इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। चले जनाब, खट्टी मीठी खबरें लेकर जो है वो मलिक साहिबा जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल है, तो आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
डब्ल्यूएस कैसे हो?
थैंक यू वेलकम।
आज तो बड़ी प्यारी टी शर्ट लगाई हुई है, बड़े आज तो प्यारे लग, आज तो कंजर्वेटिव बने हुए हो, क्या चक्कर गया है?
नहीं, हमारा सियासत कलर और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं।
अच्छा,
नहीं मैं कलर इसलिए पहनता हूँ कोई भी इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो,
नहीं पॉलिटिकल एजेंडा है
जो समाज आया और
पॉलीएफ साहब जो है आज नो कॉन्फिडेंस मूव करने वाले थे,
वो हैं
तुमने कहा चलो जी कंजर्वेटिव बन के आ जाओ।
देखिए, उनको मालूम था कि उनकी नाकामी होनी है, फिर भी उनको पंगा लेने का शौक है तो ले लें सर।
अच्छा,
वैसे ही मैंने आगे कहा था।
तो फिर तुमने ये टी शर्ट क्यों लगाया आज?
मैंने कहा ना इससे कोई कलर से कोई ताल्लुक ही नहीं उनका।
अच्छा, अब तुम अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए ये बोलते हो?
मैं तो नीला कलर, वैसे ही आज नीला हो रहा था अंदर।
अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर ऊपर से पीले हुए हो?
ऊपर से पीला हुआ हूं,
दवाइयां
खा खा के, और अंदर से मैं नीला हो रहा था।
अच्छा, तो
मैंने कहा आज नीला,
अंदर का जो दिल का जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर आ जाए,
निकाले तो इसलिए पहने, इसका कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है।
चलो ठीक है जी, आज हमारे पास खबरें सुनाते हैं इसलिए कि आज हमारे पास स्पेशल रिपोर्ट है जी। स्पेशल रिपोर्ट है आज हमारे पास लेबनान पे, और दुबई में एक बेस्ड हैं, बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन भी हैं और लेबनान से ही उनका ताल्लुक है, उनसे आज हमने बात की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में, तो वो आज आपको सुनाएंगे। तो प्लीज यू हैव टू रियली सिट टाइट, क्योंकि आप सुने एग्जैक्टली कि वहां पे इस वक्त लेबनान में क्या हालात हैं। तो जो लोग वो सह रहे हैं, जिनकी फैमिलीज लेबनान में हैं, वो सारा हाल आपको बताएंगे। तो जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। जबरदस्त किस्म के यहां पे आप इवेंट्स कर सकते हैं। कहते हैं जी हमारे पास 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और इंडोर और आउटडोर गोल्फ कोर्स के फैसिलिटीज भी हैं, खाने पीने की फैसिलिटीज के साथ। आप इनको कॉल कर लें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एट 9054588888। और जनाब पायल ज्वेलर्स, जबरदस्त किस्म के, वो कहते हैं 22 कैरेट गोल्ड के हमारे पास ज्वेलरी होते हैं। दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान से कोई भी आपका फैमिली का इवेंट है जिसमें कि आप समझते हैं कि आपको कुछ गोल्ड का गिफ्ट करना है, तो आप इनको कॉल कर लें एट 9057907879। और विलेज टेस्ट, ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं जनाब, एक डिक्सी रोड में से सागा पे है और एक ओकविल में है। तो आपको अगर मिसेस सागा जाना है तो आप कॉल कर लें एट 9052323663, और ओकविल का नंबर है 9052622294 9052622294। ठीक है जी। अच्छा जनाब, हम आपके साथ चलते हैं जनाब खबरों पे। आपको जैसे हमने कल बताया था कि ट्रूडो साहब वापस कनाडा आ जाएंगे, और आते साथ ही नो कॉन्फिडेंस मूव जो है उसको फेस करेंगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वो आज आए तो पीएफ पॉलीएफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि जो है कार्बन टैक्स गवर्नमेंट जो है इसको जाना है, और इन्होंने कहा दोनों को ही, एनडीपी को और ब्लॉक क्वेबेकवा को, वंस अगेन जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव लेकर आए तो भाई आप हमारे साथ खड़े रहो, लेकिन दोनों ने ही पहले ही कह दिया था कि आज हम नहीं जो है वो आपके साथ खड़े होंगे। और आज तो वेंसडे का दिन है, कल फिर से ये लाना चाहते हैं। इसके ऊपर बात करते हुए गवर्नमेंट हाउस लीडर करीना गूल्ड जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये गेम्स खेल रही है, और इट इज वेरी वेरी लेम कि आज के नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद फिर से थर्सडे को फिर ये एक लेकर आना चाहते हैं। तो इट्स द सेम थिंग, ये बार बार अगर लेकर आएंगे तो टाइम जो है वापस वेस्ट करेंगे। तो ये शो करती है पीएफ पॉलीएफ साहब की डेस्परेशन। आज जो नो कॉन्फिडेंस मूव पास किया गया था वो फेल हो गया, और जो 120 वोट्स थे वो नो कॉन्फिडेंस मूव को सपोर्ट करते थे, और 211 ने इसके खिलाफ वोट दिया। उसकी वजह यह है कि एनडीपी और ब्लॉक क्वेबेकवा दोनों ही चाहते हैं कि उनके जो हैं जो जो उनके कोई डील्स हैं जो ये आगे बढ़ाना चाहते हैं वो अगर गवर्नमेंट को गिरा दिया गया तो वो आगे नहीं जा सकेंगे। एनडीपी तो आपको पता ही है कि वो जो ही अपना वो जो डेंटल केयर की सारी जो है पॉलिसी वो चाहती है लिबरल गवर्नमेंट चलाए, और ब्लॉक क्वेबेकवा जो है वो चाहते हैं कि जो ओल्ड एज सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ इन चीजों के ऊपर काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट रहे। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो कंज्यूमर कार्बन टैक्स जो है उसको पॉज करेगा। आज इसकी जो सूचना है वो एनवायरमेंट मिनिस्टर स्टीवन गिलबॉल्ट ने दी, और उन्होंने कहा कि हालांकि ये इंतहाई पॉपुलर टैक्स है, एक इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें उनको कहा कि ये इंतहाई अनपॉपुलर टैक्स है तो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, क्लाइमेट को कॉम्बैट करने के लिए हम ये बिल्कुल करेंगे, और कोई चांस नहीं है कि 1 अप्रैल को हम इसको इंक्रीज ना करें। 2024 जो है वो ऑलरेडी मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत कॉस्टली रहा क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो था एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बेतहाशा था। तो अप्रैल के अंदर जो कार्बन प्राइसेस इंक्रीज अभी की गई थी $65 per ton टू $80 per ton की गई थी, जिसने के ड्राइवर्स को कॉस्ट किया था एक्स्ट्रा 3.33 सेंट्स पर लीटर। उन्होंने कहा जी कि इसको इंक्रीज किया जाएगा ईच ईयर $15 के हिसाब से अंटिल इट रीचेज $170 per ton रीचिंग 2030। कंजर्वेटिव जो है वो बार बार कहते हैं कि वो एक्स करेंगे इस टैक्स को, और जगमीत सिंह साहब भी कहते हैं कि हम जी हमारा अपना प्लान है जो हम लेकर आएंगे जो कि वर्कर्स को जो है वो बर्डन नहीं करेंगे, और उनको भी ट्रूडो साहब की ये पॉलिसी कुछ खास पसंद नहीं है। जो बीसी एनडीपी के प्रीमियर हैं डेविड एबी, उन्होंने भी कहा है जी कि हम जो प्रोविंस का कंज्यूमर कार्बन टैक्स है एलिमिनेट करेंगे अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्क्रैप करे रिक्वायरमेंट्स टू कार्बन टैक्स एमिशंस। गिलबर्ट ने बात करते हुए इसके ऊपर कहा जी कि अगर किसी और आदमी के पास भी कोई भी बेटर अल्टरनेटिव है जो कि टैक्स पेयर्स को कॉस्ट नहीं करेगा और रिड्यूस करेगा कनाडा का ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2030, तो हम बिल्कुल उसको मानेंगे, वो हमारे सामने लेकर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये प्राइसेस जो हैं ये 2030 तक ऊपर जाती रहेंगी, और उसके बाद पूछा गया कि क्या ये ऊपर जाएंगे, उन्होंने कहा जी कि नॉट नेसेसरली कि वो फिर भी ऊपर जाए। तो ये जनाब क्लाइमेट के ऊपर आज बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की। प्रीमियर डकफोर्ड साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि मैं एक टनल बनाना चाहता हूं गाड़ियों और ट्रांजिट के लिए अंडर हाईवे 401 जो कि स्टार्ट होगी ब्रैम्पटन से जाएगी स्कार्बरो तक, क्योंकि जो ट्रैफिक का ग्रिड लॉक हो गया बेतहाशा वो जो है, और जो हाईवेज हैं उनको बढ़ाने के लिए बिल्कुल कोई एक्सपेंशन नहीं की जा सकती है, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है उसको स्टडी कर रहे हैं कि एक टनल जो के सर्व करेगी एज एक्सप्रेस वे उसको बनाया जाए टू कट ग्रिड लॉक एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्प पीपल मूव फास्टर। उन्होंने कहा जी ये कि जो टनल है ये सर्व करेगी एक्सप्रेस वे के लिए ना सिर्फ गाड़ियों के लिए बल्कि ट्रांजिट के लिए भी फ्रॉम ब्रैम्पटन टू मिसिसागा इन द वेस्ट टू मार्कम एंड स्कार्ब्रो इन द ईस्ट, और ये मेजर रोड्स और हाईवेज जो हैं उनको कनेक्ट करेगी। अब इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी उसके ऊपर तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि ये 60 किलोमीटर टनल होगा और दिस इज गोइंग टू बी अमंगस्ट द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आइडिया तो सर आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन अब इसके ऊपर पैहे कितने आएंगे और क्या आपके पास वो पैहे हैं, तो उसके ऊपर जो है कोई इन्होंने बात नहीं की। स्टैट्स कनाडा ने आज खबर दी है जी कि पॉपुलेशन जो है वो 41.288 मिलियन को टच कर रही थी ऑन July 1st, जिसका के मतलब है 250,229 पीपल जो है वो सेकेंड क्वार्टर जो है उसमें एड किए गए, और ग्रोथ जो थी 0.6% रही। ग्रोथ रेट जो है वो स्लो रहा वैसे कंपेयर टू जो सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 जिसमें के 0.8% इंक्रीज देखा गया था और 0.7% इंक्रीज इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 देखा गया था, लेकिन ये सारे का सारा इंक्रीज जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से है जिसने के ऐड किए हैं 240,303 पीपल। तो वो कहते हैं जी कि ये जो डिफरेंस है बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन्होंने भी ऐड किया है 9,926। अल्बर्टा जो है उसने फास्टेस्ट ग्रोथ रेट अमंगस्ट प्रोविंसेस और टेरिटोरीज शो किया है विद इंक्रीज ऑफ 1% इन द सेकेंड क्वार्टर, और नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज जो है उसमें सेकेंड क्वार्टर में स्लोएस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन रहा 0.1% से। आपको बताइए कि यूएनजीए का स्पेशल मीटिंग चल रहा है, तो वहां पे आज का जो सेशन था उसके ऊपर बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने एक दफा से फिर इसराइल को बहुत ज्यादा कंडेम किया, और ये जो वॉर चल रही है गाजा के अंदर इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर एक ग्लोबल एक्शन लेने की जरूरत है। ये जो न्यूयॉर्क के अंदर यूएनजी का मीटिंग चल रहा है, सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने कहा कि ये खामोश बैठे रहने का वक्त नहीं है कि हमारे सामने अपार्थाइड जो है वो किया जा रहा हो, और उन्होंने अपार्थाइड का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनके अपने मुल्क में बड़े अरसा तक अपार्थाइड चला जो कि एंड हुआ 1990s में। उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं साउथ अफ्रीका का के जो यानी कि अपनी कंट्री का कि वो जो है ये केस जो है लेकर गए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है उसके अंदर, यानी कि अपने लॉयर्स का वो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वो इसको लेकर गए हैं। उन्होंने कहा जी कि लास्टिंग सॉल्यूशन सिर्फ इसी तरह है कि पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करे अलोंग विद इसराइल विद ईस्ट जेरूसलम एज पैलेस्टाइन्स कैपिटल, और वो कहते हैं कि इसके लिए हमको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी स्वीपिंग रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो ये यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है ये क्लब ऑफ फाइव नेशंस बस बना हुआ है और उन्हीं की मानी जाती है और किसी की नहीं मानी जाती। इस मौके पर बात करते हुए कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो जो है उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने भी एतराज किया नतन्याहू के ऊपर जो वो कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं गाजा पे। उन्होंने कहा जी कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि इतना ज्यादा मैस डिस्ट्रक्शन जो है किया जाए या कि जो है वो बॉम्ब्स गिराए जाए एंड इट्स ऑल बींग डन बाय अ क्रिमिनल लाइक नतन्याहू जो वो गाजा में कर रहा है। वो कहते हैं जी जिस वक्त गाजा मरता है तो ह्यूमैनिटी सारी मरती है। 20,000 बच्चे जो हैं उनकी डेथ्स हो चुकी हैं और ये जो प्रेसिडेंट्स यहां पे आए हुए हैं ये यूएनजीए में ये सिर्फ इस सिचुएशन पे हंस रहे हैं। अमीर ऑफ कतर जो हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी उन्होंने भी आज बात करते हुए कहा कि ये बिल्कुल एट्रोसिटीज जो हैं ये खत्म होनी चाहिए ना सिर्फ गाजा में बल्कि लेबनान में। वो कहते हैं जी एक लंबे अरसे से हम मीडिएशन एफर्ट्स जो हैं वो चलाए हुए हैं, ये एक पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन और रीजनल मसला है और इसको सारे पार्टनर्स को मिलकर सॉल्व करने की जरूरत है और सीज फायर की तरफ जाने की जरूरत है ताकि प्रिजनर्स और डिटेनीज वापस किए जा सकें और एक लेजिटिमेट इंटरनेशनल जो सोल्यूशन है उसकी तरफ जाया जा सके जो कि अरब पीस इनिशिएटिव भी जिसको मांगे जिसके अंदर पैलेस्टीनियंस को उनके लेजिटिमेट राइट्स दिए जाए उनकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स विद द ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल और 1967 बॉर्डर्स जो है वो फिर से बनाया जाए। इसके साथ साथ जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला टू हैं उन्होंने भी इसराइल को बड़ा कंडेम किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो एट्रोसिटीज हैं ये आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मगर जाहिर है कि ये सारा लिप सर्विस है। कतर तो चलो फिर भी मीडिएशन में बैठा हुआ है, बाकी सारे तो माशाल्लाह से जो हैं यस साउथ अफ्रीका हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब बट अदर्स आर जस्ट यू नो डेड क्या कह सकते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट अब चल रहा है जी हिज़्बुल्लाह और इसराइल के बीच में इसकी वजह से लेबनान को आज बहुत सारी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो बिल्कुल अपना जो है एयर ट्रेवल बंद कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है कि ये इसराइल की स्ट्राइक्स जो हैं ये बहुत ज्यादा अब इंटेंसिफाई कर दिए हैं तो जितने मेजर इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने ऑपरेशन सस्पेंड किए हैं टू एंड फ्रॉम बेरूत का जो रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एमिरेट्स एयरलाइंस, कतर एयरवेज, एयर फ्रांस इन सब ने पहले तो अनाउंस किया सस्पेंड करने का, उसके बाद दूसरी एयरलाइंस एतिहाद एयरवेज, लुफ्थेंजा, इजिप्ट एयर इन्होंने भी फिर अनाउंस किया कि ये हम जो है ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्दुल्ला अबू हबीब जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आखिरी जो स्पीच दे रहे थे अपने टेन्योर की बाइडन साहब उसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि मुझे कोई होप नहीं है आपकी स्पीच से कि मिडल ईस्ट के अंदर पीस आएगा और कोई आपका ऐसा प्रॉमिस नहीं है या कि ये गाजा या कि लेबनान के कोई मसले हल करेगा। उसके बाद फिर ये कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस इवेंट के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने उधर भी कहा कि यूएस ओनली कंट्री है जो कि दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन मिडल ईस्ट ऑल्सो फॉर लेबनान, लेकिन उन्होंने कहा मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई बाइडन साहब ने जो मिडल ईस्ट के ऊपर रिमार्क्स किए क्योंकि बाइडन साहब ने तो बस बड़ा ही माइल्डली कह दिया कि भाई इमीडिएटली जो है सीज फायर किया जाए इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में और ये जो चीजों को एस्केलेट ना किया जाए लेबनान की तरफ। तो मतलब है ये तो बड़ी माइल्ड सी बात है, भाई आप असला देते रहेंगे तो इसराइल लड़ता रहेगा, आप असला देना उनको बंद करो और उनको जोर दो कि भाई आपके सारे जैसे ईरान को आप देते हो हर वक्त धमकियां कि सैंक्शंस लगाएंगे, इसराइल को भी कहो ना जरा कि भाई तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे, सारी तुम्हारी कंपनियां जो है रोल बैक यहां से करने लगे हैं, हम तुम्हारे सारे जो तुम्हें इतना लंबा हम जो फंड्स देते हैं आर्म्स देते हैं वो सबके साथ हम शट डाउन कर देंगे अगर तुमने ये देखो। फिर इसराइल कैसे दो मिनट में बात मानता है, आप उसको दबा दब सारा इक्विपमेंट भी भेज रहे हो, आप उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा रहे, आप उसको पैसे भी दे रहे हो, तो वो तो भाई मजे में है ना, फिर वो तो लड़ेगा जैसे कि यूक्रेन है, यूक्रेन भी मजे में लड़ता जा रहा है जिसके ऊपर आज बहुत ज्यादा वहां पर एतराज किया गया है कि भाई ये जो है ये यूक्रेन को क्यों इतना पैसे दिए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने जो है वहां पर आज काफी अमरीका में बात की है। यूके जो है उसने जनाब अब अपने 700 ट्रुप्स जो हैं वो साइप्रस में भेज दिए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि किसी भी वक्त यूके जो उनके ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनको लेबनान से इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ सकती है अगर चीजें बहुत ज्यादा भड़क गई। कल आपको पता ही है हमने आपको बताया था कि जो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा है वो भी बहुत इस चीज के लिए परेशान है और मेलनी जोली साहिबा ने भी कहा है कि अभी भी चांस है कैनेडियंस के लिए फौरन वहां से निकल जाए। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केर स्टॉर्मर उन्होंने आज कहा है दोनों कंट्रीज को कि भई आप डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सारे ब्रिटिश नेशनल्स को कहा कि इमीडिएटली लेबनान को आप छोड़ दें और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपनी टीम्स को फिर भी रेडी रखे हुए हैं कि अगर ये जो साउथ ऑफ लेबनान की तरफ बहुत ज्यादा जो बढ़ गई है अगर ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में बढ़ी तो हम इमीडिएटली अपने नेशनल्स को कैसे इवैक्यूएट करेंगे। रॉयल एयर फोर्स जो है उसके एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी बिल्कुल स्टैंड बाय पे हैं, और ये फर्स्ट फेज है ऑफ कंटिंजेंसी प्लान जो कि यूके ने बनाया है। और वो कहते हैं जी कि ये जो केओस देखा गया था यूएई नेशनल्स को निकालने का अफगानिस्तान से 2021 में, वैसा केओस हम नहीं करना चाहते और प्रिपेयर पहले से ही होना चाहते हैं। उन्होंने आर्मी को कहा है कि भई आप सपोर्ट लें बॉर्डर फोर्सेस और फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स की, और उनके साथ ये सब मिलकर अब काम करेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी गवर्नमेंट जो है अपना प्लान इसलिए ये जो है प्रिपेयर करना चाहती है कि अगर कभी भी इमरजेंसी पड़ी तो हम वहां से निकालें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूं इसराइल और लेबनान दोनों को कि दे नीड टू पुल बैक फ्रॉम द ब्रिंक, यानी कि ब्रिंक ऑफ केओस एंड वॉर, क्योंकि एक फुल फ्लेज्ड वॉर जो है वो अब शुरू हो सकती है वहां पे जिस तरह के बॉर्डर पे हालात बने हुए हैं। ट्रंप साहब जो है जी उनको आज ब्रीफ किया गया है यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि एक बड़ा ही रियल और स्पेसिफिक थ्रेट है आपकी लाइफ को ईरान की तरफ से कि आपको मारा जा सकता है। ये ट्रंप साहब की कैंपेन ने आज इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इसके अंदर क्लेम्स जो हैं किसने दिए स्पेसिफिकली कौन है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, कुछ क्लैरिफिकेशंस जो हैं उसके बारे में नहीं दी गई। लेकिन उन्होंने कहा जी कि इस तरह के कोई डेथ प्लान्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं ट्रंप साहब के लिए। उन्होंने कहा जी कि ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो इस तरह का कुछ काम कर सकती है, हालांकि ईरानियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी तक कोई भी कॉमेंट नहीं दिया है। इससे पहले भी तेहरान ने बिल्कुल डिनाई किया था ये यूएस का क्लेम कि वो अमेरिकन अफेयर्स में कोई इंटरफेयर करने की कभी भी कोशिश करते हैं। ट्रंप साहब ने आज एक्स के ऊपर लिखा कि देर आर बिग थ्रेट्स ऑन माई लाइफ बाई ईरान, और उन्होंने कहा जी कि जो ईरान है वो ट्राई कर रहा है ये सब चीजों के लिए, तो मैं आपको एक इत्तला दे रहा हूं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि जो अटैकर था जो मुझे मेरे पे जिसने अटैक किया था उसका विश था कि वो मुझे मार दे, लेकिन मैं थैंक यू बोलता हूं कांग्रेस को कि उन्होंने फटाफट अप्रूव किए हैं पैसे कि सीक्रेट सर्विसेज वाले जो है उनको ज्यादा फंड्स दिए जाएं ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने आज एक मेजर 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 अनाउंसमेंट की है। आपको पता ही है बाइडेन साहब के कुछ दिन ऑफिस में रह गए हैं, दिस इज अ ह्यूज बिग न्यूज। बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अब जो कतर के नेशनल्स हैं उनको यूएस का वीजा लेने की जरूरत नहीं है अगर वो 90 डेज के लिए यानी 3 महीनों के लिए अगर वो यूएस के अंदर आ रहे हैं। सो नाउ कतर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूएस वीजा वेवर प्रोग्राम। ये जो इनकी पिछले दिनों में मुलाकातें जो हैं जो कतर के अमीर जो हैं हमद बिन थानी उनके साथ हो रही थी, तो उस सिलसिले में बहुत सी जो बातें की गई थी उसमें इसका भी जो है वो जिक्र किया गया था। एज अ रिजल्ट 90 डेज विदाउट सिक्योरिंग वीजा कतारीज कैन एंटर। ये सारी अनाउंसमेंट जो है होमलैंड सिक्योरिटी की के जो सेक्रेटरी हैं अलेक्जेंड्रो मियोराकिस उन्होंने आज दी हैं। उन्होंने कहा जी कि दोहा और हम जो हैं एक जैसे वैल्यूज शेयर करते हैं रिगार्डिंग वर्ल्ड अफेयर्स, और इसके अंदर जो कतर है वो दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रैवल और ट्रांसफर हब्स है, और हम चाहते हैं कि हमारे और इनके बीच में जो है रिलेशंस और स्ट्रेंथन हुए, खासतौर पे जो सिक्योरिटी फॉर यूएस है इसको भी हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और हम अपनी डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनके साथ बनाना चाहते हैं जिसकी के वजह से फ्लो ऑफ पीपल जो है वो ज्यादा एनहांस होएगा और इसके साथ साथ हमारी जो ट्रेड एंड कॉमर्स है दोनों कंट्रीज के बीच में वो भी बढ़ेगी। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शावेज खान साहब, एक कंसल्टेंट इंक के साथ होते हैं, और वो कहते हैं अगर आपके पास बच्चे हैं 12 ईयर से कम तो आपको गवर्नमेंट का एड मिल सकता है 12,000 से 60,000 तक। आप शावेज को कॉल कर लें 8647769041। और जनाब राजा बचा जी जैसे उन्होंने आमिर के बचाए हैं 1775 आपके भी बचा सकते हैं, आप उनको कॉल कर लें जी प्लीज। ऑल स्टेट के साथ होते हैं, आपके पास दो गाड़ियां और घर है तो आप कॉल करें राजा बादशाह को, इनका नंबर है 6472903773। ठीक है जी। अच्छा जनाब पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो इस्लामाबाद में उसने रिजर्व किया है वर्डिक्ट ऑन नैब्स प्ली टू रेफर तोशा खाना रेफरेंस अगेंस्ट आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ एंड यूसुफ रजा गिलानी बैक टू नैब। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज थे की आबिदा सज्जाद जो थी वो नैब का ये प्ली सुन रही थी जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो हैं ये इन्वॉल्व हैं ये तोशा खाना से चीजें लेने के लिए, लेकिन इन्होंने अपना जो वर्डिक्ट है सारी हियरिंग सुनने के बाद अक्टूबर 14 तक जो है रिजर्व किए हैं। ये केस 2020 का रेफरेंस जो फाइल किया था नैब ने अगेंस्ट प्रेसिडेंट जरदारी नवाज शरीफ के, इन्होंने तोशा खाना से सिर्फ 15% प्राइस पे करके लग्जरी गाड़ियां जो थी जो उनको तोहफों में दी गई थी वो उठा ली थी और ये तमाम का तमाम काम फैसिलिटेट किया था यूसुफ रजा गिलानी साहब ने। जरदारी साहब के लॉयर जो है फारूक नायर, उन्होंने कहा जी कि कोर्ट जो है वो अथॉरिटी उसके पास नहीं है कि वो नैब के केसेस सुने, क्योंकि नैब अमेंडमेंट बिल जो है अब आ गया है तो उसके अंडर ये केसेस जो हैं ये कोर्ट नहीं सुन सकती है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि जो जरदारी साहब हैं वैसे भी उनको चूंकि वो प्रेसिडेंट रहे हैं अब ट्वाइस तो उनको इम्यूनिटी है। वाह जी वाह क्या बात है। तो उन्होंने कहा जी ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि जरदारी साहब का केस जो है एफआईए को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जरदारी साहब जो है उनको लीबिया और यूएई की गवर्नमेंट्स ने लग्जरी कार्स जो थी वो दी थी और बजाय इसके कि वो तोशाखाना में वो गाड़ियां डालते वो दोनों गाड़ियां उन्होंने अपने पास रख ली थी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो है उनको भी पीपीपी की जो गवर्नमेंट 2008 में आई थी, हालांकि नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उनको कहा था कि अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ये ले लें, जिसमें कि एलिजिबली कहा गया था कि जी नवाज शरीफ साहब ने परचेज किया ये गाड़ी और बाद में चीजें जो खुल के सामने आई जो नैब ने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने एक फेक बैंक अकाउंट जो है उससे कहा जी मैंने पैसे भेजे हैं, पैसे कोई नहीं भेजे थे। तो आज वो कहते हैं जी कि ये केसेस जो हैं नैब ने कहा कि हमें वापस दो, तो अब इसके ऊपर अभी तक जजमेंट नहीं आई है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जो आएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने प्रोजेक्ट किया कि पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो ग्रो करेगा 2.8% से इन फाइनेंशियल ईयर 2025 अंडर टफ रिफॉर्म्स जो कि इस्लामाबाद ने ली हैं अंडर आईएमएफ 37 मंथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी डायरेक्टिव। उन्होंने कहा जी कि दिसंबर 2024 की जो रिपोर्ट है वो ये शो करती है कि ग्रोथ रीबाउंड की है पाकिस्तान के अंदर टू एस्टीमेटेड 2.4% इन ऑनगोइंग ईयर, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं टू इम्प्रूव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिस्टोर बायलैटरल मल्टीलैटरल इनफ्लोज। उसकी वजह से वो कहते हैं जी मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है और आपको पता ही है कि ये रिपोर्ट जो है आज ही सुबह आई है और आज ही आईएमएफ ने जो था उसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो रही थी जिसने कि ये ग्रीन लाइट देनी थी $7 बिलियन की 37 मंथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी टू पाकिस्तान वंस अगेन, जो कि अब उसने दे दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं फॉर पाकिस्तान योंग जी, उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद की इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो हैं वो बड़े क्लोजली टाइड हैं विद उनकी राइट पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स जो कि उन्होंने इम्प्लीमेंट की है, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जो है इकोनॉमी में सुधार आ रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसने आज अनाउंस किया है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जो कि टैक्स नहीं देते हैं और इसके अंदर जो नॉन फाइलर कैटेगरी थी अब उन्होंने इसको खत्म किया है। जो नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करने के बाद अब एवरीबडी कम्स इन द टैक्स नेट बेस और वो कहते हैं जी कि जो लोग टैक्सेस नहीं देंगे तो इनिशियल रिस्ट्रिक्शंस जो उनके ऊपर होगी कि वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, गाड़ियां नहीं ले सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, करंट अकाउंट्स नहीं खोल सकेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, हां रिलीजियस ट्रैवल करना है तो वो कर सकते हैं। वो कहते हैं जी कि अब उनको जो है उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी होएगा कि वो टैक्स दें, टैक्स अवेड अब वो नहीं कर सकेंगे। एफबीआर के जो चेयरमैन है राशिद महमूद लांगरियल, उन्होंने कहा कि जी 15 एक्टिविटीज जो हैं वो प्रोहिबिट की जाएंगी इन इंडिविजुअल्स के लिए जो अपने टैक्स रिटर्न्स नहीं भरेंगे इन 5 एरियाज और हमारे पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अब मशीन्स आ गई हैं जिसके के अंदर एल्गोरिदम्स हैं जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉन फाइलर्स को। उन्होंने कहा जी कि ये जो है सिर्फ 25 बिलियन रुपीस के जो फीस हैं वो कलेक्ट किए गए हैं और नॉन फाइलर्स जो हैं वो बिल्कुल ज्यादा नहीं देते हैं टैक्स, हालांकि अब इनको पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू के अंदर लाया जा रहा है क्योंकि इनसे ये जो अनकलेक्टेड टैक्सेस हैं इनको कलेक्ट किया जा सके। ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये फौरन नहीं लगाई जाएंगी, इसको लगाने में कुछ महीने लगेंगे। एक बलूच खातून है जी अदीला बलूच, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी अलोंग विद फारा अजीम शाह एंड शाहिद रिंड बलोच जो कि बलोच गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन थी। उन्होंने कहा जी कि जो यूथ है उसको ल्योर किया जा रहा है टेररिज्म के लिए और मुझे भी ब्रेन वॉश किया गया था लेकिन मैं बड़ा थैंकफुल हूं गवर्नमेंट को कि उन्होंने मुझे इसमें बचाया। ये जो बच्ची आज बात कर रही थी यहां पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उधर उसके पेरेंट्स भी बैठे हुए थे, उसके पेरेंट्स का जो फादर है उसने वहां पर बात करते हुए कहा जी कि जब मेरी बच्ची को किडनैप किया गया तो मैंने बताया जाके अथॉरिटीज को और उन्होंने फिर मेरी बच्ची को जो है फाइंड आउट किया है क्योंकि हमें पता है कि जो माउंटेन्स में चले जाते हैं वो बिल्कुल वापस नहीं आते हैं लेकिन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो टाइमली भी एक्शन था उससे मेरी बच्ची वापस आई है। ये लड़की जो है एजुकेशन हासिल इसने इनिशियल की थी तुर्बत के अंदर और फिर ये क्वेटा के अंदर नर्सिंग परस्यू कर रही थी, तो इसने आज सबको कहा है कि भाई ये जो आपको ल्योर कर रहे हैं टेररिज्म के लिए आप उसके अंदर मत जाओ। वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उसको फौरन अनाउंस किया जाए, और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पार्टी है पीटीआई वो बैक करती है जस्टिस मंसूर अली शाह को इस पोस्ट के लिए। आज वो जर्नलिस्ट के साथ बात कर रहे थे अडियाला जेल के अंदर, उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी पावर्स को कम करने के लिए और जुडिशरी को बर्बाद करने के लिए ये सारा किस्सा जो है सामने लाया गया है। वो कहते हैं जी कि ये अपने मतलब के जज लगाना चाहते हैं ताकि 2024 का इलेक्शन फ्रॉड और बाकी के इनके फ्रॉड जो है उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके। इसके साथ साथ जो एडवाइजर टू केपी चीफ मिनिस्टर ऑन इन्फॉर्मेशन है बैरिस्टर मोहम्मद अली सेफ, उन्होंने भी कहा कि ये जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर बात कर रही है तो हम इसको हां नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उसके बराबर होगा कि हम कहें कि फरवरी 8 के जो इलेक्शन थे वो बिल्कुल ठीक है हालांकि हमने कई दफा कहा है कि वो रिग्ड थे, तो हम इस चीज को एंडोर्स नहीं कर सकते हैं। और ये कैसे पार्लियामेंट अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जबकि ये इनकम्प्लीट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये इसको लेजिस्लेट करें, क्योंकि इनके नंबर जाहिर है कि पूरे नहीं है और वैसे भी ये एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है और हम इसका कोई भी जो बात है वो नहीं मानते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है काजी फैज ईसा साहब, उन्होंने कहा है जी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उन्होंने ही ईसीपी जैसा अदारा बनाया है तो उसको हम कैसे अबॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ईसीपी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की कोई बात भी नहीं मान रहा है और मुस्तकिल तौर पे सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि जी इसको आप डिसॉल्व करें इस इंस्टीट्यूशन को। तो उन्होंने कहा जी हम कैसे करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वही इनको भी बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व वर्डिक्ट जो है ऑन ईसीपी पिटीशन जिसमें के चैलेंज किया गया था फॉर्मेशन ऑफ 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इन पंजाब बाय फॉर्मर लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के वो हियरिंग करें 2024 के जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स केस हैं। 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विद जस्टिसेज अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल, नईम अफगान, अकील अब्बासी, उन्होंने जो ईसीपी की ये जो अपील थी ये हियर कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया हामिद खान का प्ली जो कि अपने काउंसल सलमान अकरम राजा की जगह बात कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने आप को इस केस से रिक्यूज करें इस बेंच के ऊपर, यानी वो ना बैठे वो ना सुने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान से जो कि पढ़ रहे थे अपना लास्ट पैरा ऑफ द ऑर्डर ऑफ लास्ट हियरिंग ऑफ July 4, उस वक्त जो है हामिद खान साहब ने कहा कि भई आप अपने आप को रिक्यूज करें, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद साहब को कि हामिद साहब यहां पे सब लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, वो चाहते हैं कि जिस वक्त एएजी अपना ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो मैं यहां पे बैठूं। हामिद खान साहब ने कहा कि जी आप बिल्कुल हमें कोई एतराज नहीं है जो मर्जी यहां पर पढ़ा जाए लेकिन आप अपने आप को रिक्यूज करें और आप यहां से हटें इस बोर्ड से। तो जनाब गर्मा गर्मी रही अदालत में भी। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जी जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने आज वाना का एरिया जो साउथ वजीरिस्तान में है उसको विजिट किया और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वहां पे उसको देखा और उन्होंने कहा जी कि ये जो ऑन गोइंग काउंटर टेररिज्म की ये जो ऑपरेशन और ऑब्जेक्टिव हैं हमारे और इनिशिएटिव हमने लिए हुए हैं ये बिल्कुल ठीक से जा रहे हैं। वो बड़ा खुश हुए सारा प्रेपरेशन देख के। उन्होंने कहा जी ये जो हॉस्टाइल थ्रेट्स हैं इनको खत्म करने के लिए फौज का मोरल काफी हाई है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मिलिट्री हमेशा इस तरह के जो नफेरियस डिजाइन करने वाले मुल्क के खिलाफ लोग हैं उनके खिलाफ फाइट करेगी और उन्होंने खास तौर पे केपी के लोगों की बहुत ज्यादा तारीफ की फॉर मेंटेनिंग पीस। और उन्होंने कहा जी कि जो प्रोजेक्ट्स भी वहां पर चल रहे हैं अंडर साउथ वजीरस्तान इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान उसको भी वो चलाए हुए हैं और इसके अलावा उन्होंने ट्राइबल एल्डर्स का भी शुक्रिया अदा किया फॉर देयर इनवैल्यूएबल सपोर्ट इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड बैकिंग पाकिस्तान मिलिट्री। तो उन्होंने इनकी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा की। जनाब इंडिया दे विच भी ओही गर्मा गर्मी चल रही है क्योंकि पहले तो जी जम्मू और कश्मीर और हरियाणा का बताया था, अब जनाब महाराष्ट्र में भी आने वाले हैं इलेक्शंस। अहेड ऑफ महाराष्ट्र असेंबली पोल्स शरद पवार साहब की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है एनसीपी शरद पवार एसपी वो बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं और बहुत सारे मर्जर्स और एक्विजिशंस कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि बीजेपी जीते। पिछले 4 महीने से वो जो हैं ये कोशिशें कर रहे हैं जिसकी वजह से 8 डिफरेंट पार्टीज के लीडर्स ने एनसीपी को आके ज्वाइन किया है। इसमें से 2 जो हैं एक बीजेपी के हर्षवर्धन पाटिल हैं, एक एनसीपी के राम राजे नायक निम्बलकर हैं और ये अपनी पार्टियों से ज्यादातर नाराज थे, इसीलिए इन्होंने आके जो है इनको ज्वाइन किया। इसी तरह राजा बाबू भट्ट जो हैं, वो बीजेपी के एमएलसी पंकज मुंडे से बड़े ज्यादा क्लोज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको छोड़ दिया है। इसके साथ साथ इनकी जो कजन है धनंजय मुंडे, उन्होंने भी आके इनको ज्वाइन किया है शरद की पार्टी को। शरद की पार्टी का एक ही है कि अलायंसेस बनाओ और बीजेपी को पीछे धकेलो। इसके साथ साथ बीजेपी जो है वो भी काफी हरकत में नजर आई, लेकिन आज बीजेपी थोड़ा हिली भी, क्योंकि हरियाणा के अंदर आपको पता है जो इलेक्शंस आ रहे हैं उस सिलसिले में कंगना रनावत साहिबा के कुछ रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए, और उन्होंने कहा जी कि वो रीइंस्टेट करेंगी 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी की उसने रिपील किया था इन 2021। इसके ऊपर बात करते हुए हरियाणा बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं मोहन लाल बडोली, उन्होंने कहा जी कि इसकी तो आदत है ये बातें करती रहती है, इसकी बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जो ये बातें करती है वो बीजेपी का स्टैंड नहीं है, तो इसको जाने दो आप। कश्मीर के अंदर जी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसके अंदर आज सेकंड फेज ऑफ इलेक्शंस हुए। इसके ऊपर बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि बारामूला के जो एमपी हैं इंजीनियर रशीद, वो चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े उन्होंने एलिगेशंस बल्कि उनके ऊपर लगाए। उन्होंने कहा जी कि 2018 में ही इसको बीजेपी की गवर्नमेंट का इंटेंशन पता चल गया था कि वो रिवोक कर रहे हैं आर्टिकल 370, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल खामोश रहे। एक पब्लिक रैली कर रहे थे ये, और उसमें उन्होंने एक्यूज किया अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ को, और उन्होंने कहा जी कि ये इमोशनल पॉलिटिक्स अब खेल रहा है और इसको जो है मोदी की गवर्नमेंट ने अब डायरेक्ट किया है कश्मीरियों को प्लेट करने के लिए। उसने कहा जी अपने बहुत सारे रीसेंट इंटरव्यूज में इंजीनियर रशीद ने यह कहा है कि उसने एक घंटा जाके मोदी जी से जो है वो बात की, और ये क्या बात उनके साथ करता रहा, और अगर ये चाहता तो इससे पहले कि ये आर्टिकल 370 स्क्रैप किया जाता, अगर ये बता देता तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते और सुप्रीम कोर्ट जरूर अपना वर्डिक्ट जो है वो कश्मीरियों के हक में देती, हम अपना स्पेशल स्टेटस, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग जो था वो बचा सकते थे, लेकिन चूंकि ये खामोश रहा तो उसकी वजह से आज लोग जो है कश्मीर में सफर कर रहे हैं। आज का जो सेकेंड फेज का यहां पर इलेक्शन चल रहा था उसके अंदर 54% वोटर टर्नआउट रहा। उमर अब्दुल्ला जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं दो से, एक गंदरबल से और एक बडगाम से, और बाकी के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो बीजेपी के जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ हैं रविंदर रायना, जिन्होंने के जो डिफेंड कर रहे हैं अपने नौशहरा की सीट को, और कांग्रेस के जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ हैं तारिक हामिद कड़ा, वो यहां पे हैं। ये जो 90 असेंबली सीट जो है इलेक्शन, इसमें आज 26 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस हुए। वोटिंग जो थर्ड फेज की है वो 1 अक्टूबर को शुरू होएगी, काउंटिंग 8 अक्टूबर को होएगी, और उसके पहले ही जरा हरियाणा में भी इलेक्शंस जो हैं शुरू हो जाएंगे जो कि अक्टूबर 5 को होंगे। तो साथ साथ जो है जनाब ये दो स्टेट्स में चलेंगे। फरदीन खान साहब ने जी आज याद किया अपने आइकॉनिक फादर फिरोज खान को ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, अपने और अपनी बहन लैला की तरफ से, और जो है कुछ बड़ी इमोशनल उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जी कि 15 साल से हम आपके बगैर हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा है हम आपकी कमी को और ज्यादा महसूस कर रहे हैं, खासतौर पे वो लोग जो आपसे नहीं मिले, यानी कि आपके ग्रैंड किड्स और थर्ड जनरेशन ऑफ खान्स, लेकिन फिर भी आप उनके दिल के अंदर बसते हैं। आपका जो फियरलेस हार्ट और अनमैच स्पिरिट थी उसको आज भी हम जिंदा रखे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी आप जैसे लेजेंड की स्टोरी सुनी है, फॉर योर ग्रेस, योर स्ट्रेंथ, योर टाइमलेस कैरिज्मा, और वही स्टोरीज जो है वो सुन के खुश होते हैं, और ये जो चीज है उनके ब्लड में रन करती है। आपकी लेगेसी जो है वर्ड्स में बयान नहीं की जा सकती। हैप्पी बर्थडे पा। तो बड़े ही इन्होंने आज इमोशनल बातें लिखी। और जनाब सलमान खान जो है ही इज बैक एज होस्ट ऑफ बिग बॉस, और जो नया फॉर्मेट है सीजन 18 के लिए वो बीटीएस पे प्रोमो उनका रिलीज हुआ है, और इसको रिलीज किया है कलर्स ने, और उस पर उन्होंने कहा जी कि ये न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिग बॉस में आपको पता ही है कि हाउसमेट्स जो है उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि उसमें एक ही आंख है, अब एक और भी आंख होगी जो आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकेगी, और जो है वो जो भी कुछ गलत भी होने वाला है उसको भी वो देख के प्रिडिक्ट कर सकेगी। तो अब आपका जो रेस है वो टाइम के साथ है। ठीक है जी, ऐसे मनोज वाजपेयी साहब ने आज अपने दिल के बड़े दुख जो हैं वो रोए हैं। आपको पता ही है कि ही इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड एक्टर और बड़े जबरदस्त किस्म के डिफरेंट रोल्स करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी मुझे स्टीरियो टाइप किया जाता है, मुझे ज्यादातर गरीबों वाले रोल दिए जाते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मुझे कभी भी रिच आदमी जो है वो नहीं दिखाया जाता और बड़ा स्टीरियो टाइप मुझे किया जाता है। वो कहते हैं जी कि सिर्फ जो फिल्में गुलमोहर से पहले जो 2023 में ये फिल्म आई थी उससे पहले मैं सिर्फ एक दो फिल्मों में ही जो है रिच रहा हूं, जैसे कि जुबैदा जो 2001 में आई थी, तुमने अगर नहीं देखी आमिर जरूर देखो, अमेजिंग मूवी। जुबैदा के अंदर जो है मुझे रिच गाय बताया था क्योंकि श्याम बेनेगाल जो थे वो कहते थे कि ये रियल राजे महाराजे जो है ग्रीक गॉड्स की तरह नहीं होते, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह दिखते हैं। इसके बाद फिर जो वीर जरा थी 2004 में आई थी उसमें मुझे पाकिस्तानी एक पॉलिटिशियन दिखाया था, लेकिन उसमें मेरे दो ही सीन्स थे, लेकिन यश चोपड़ा साहब ने इंसिस्ट किया था कि वो सीन्स मैं ही करूं क्योंकि वो मेरी एक्टिंग देख चुके थे पिंजर में जो 2003 में आई थी। तो खैर वो कहते हैं जी मुझे गरीबों वाले रोल देते हैं ये लोग। और जनाब सम गुड न्यूज, पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम जो है इट हैज रीच सेमीफाइनल्स ऑफ 2024 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो कि जिसको के सैफ बोला जा रहा है, SAFF चैंपियनशिप जो भूटान में हो रही है। आज भी इन्होंने श्रीलंका को 5-1 से हराया और अब ये जो है फाइनल के अंदर पहुंच गए हैं। पीसीबी जो है उन्होंने अपने 15 मेंबर स्क्वाड जो है फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड जो कि मुल्तान में शुरू होने वाला है अक्टूबर 7 से 11 के बीच में, आज उसके अनाउंसमेंट किए हैं। हेड कोचेस जो थे जेसन गिल्स भी, उनके और दूसरों के रिकमेंडेशंस की वजह से कुछ जो प्लेयर्स हैं उनको विदड्रॉ किया गया है फ्रॉम चैंपियंस वन डे कप प्ले ऑफ्स ताकि उनको थोड़ा रेस्ट दिया जा सके अहेड ऑफ सीरीज। ये जो स्क्वाड है ये अब असेंबल होएगा मुल्तान में सितंबर 30 को और ट्रेनिंग ये करेंगे अक्टूबर 1 को। ये जो स्क्वाड आज अनाउंस किया उसमें शान मसूद कैप्टन रहेंगे, साउद शकील वाइस कैप्टन, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद हुरेरा, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नईम शाह, नोमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद विकेट कीपर, शाहीन शाह अफरीदी को लिया गया। इसके अलावा जो आर्म लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं नोमान अली, उन्होंने रिप्लेस किया है इंजर्ड बॉलर खुरम शहजाद को। और इसके अलावा पीसीबी कह रही है कि कामरान गुलाम और मोहम्मद अली जो हैं जो कि पार्ट ऑफ बांग्लादेश टेस्ट थे वो भी हमारे रेडार पे हैं, जब भी कोई लड़का होएगा जख्मी तो हम उसको लेंगे। एंड फॉर दिस सेगमेंट अवर लास्ट न्यूज इज जो है वो जो मैच चल रहा था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जबरदस्त किस्म की मेडन ओडीआई सेंचुरी बनाई है न्यू कैप्टन हैरी ब्रुक ने, जिसकी की वजह से इंग्लैंड जो है वो जीता। ये मैच जो था कभी रेन हो रही थी कभी नहीं हो रही थी और डीएलएस के थ्रू फिर इनकी विक्ट्री आई ओवर ऑस्ट्रेलिया इन थर्ड मैच इन 5-मैच सीरीज। ऑस्ट्रेलिया जो था वो चाहता था 15 सक्सेसिव ओडीआई विन और उसने पोस्ट भी किए थे 304 रन, लेकिन वो जीत नहीं सके। स्टीवन स्मिथ ने 60, आरोन हार्डी ने 44, एलेक्स कैरी ने 77 नॉट आउट। बोथ ओपनर्स जो थे इनके अर्ली आउट हो गए थे। ब्रुक और विल जैक्स ने फिर बिल्ड किया 156 रन का पार्टनरशिप और ये थे 200 for 5 आफ्टर 40 ओवर्स, जो इन्होंने बड़ी स्पीड पकड़ी। कैरी ने बनाए रैपिड 68 और हार्डी ने बनाए जो है 44 ऑफ 26 बॉल्स इन जस्ट अबाउट 7.1 ओवर्स और हालत पतली थी, हालांकि इंग्लैंड की 11 for 2 थे। तो ये थी हमारी खबरें। अब हम जाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ जो कि हमने आपको बताया था लेबनान के ऊपर है और उसमें हमने एक हमारे मेरे साथी हैं जो कि दुबई बेस्ड हैं तो लेबनीज हैं वो, तो उनसे हमने बात की है और उनके भी हम कुछ इनपुट्स लेंगे कि इस वक्त लेबनान में क्या हालात हैं, क्या चल रहे हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा। यहां पे होती हैं जी डॉक्टर नाजिया रहमान, उनके पास आप जाएं, जबरदस्त सर्विसेज देते हैं। कोई इंश्योरेंस आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द नंबर इज 9058721110। और जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, वो कहते हैं जबरदस्त किस्म की यहां पे जो है आपके पास फैसिलिटी आते हैं, आप जाएं और आप एंजॉय का मजा लें। ठीक है, अच्छा जनाब हमारी स्पेशल रिपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेबनान के ऊपर है, तो हम आपको बता दें कि इसराइल की बम्बार्डमेंट जो है कॉन्स्टेंटली चल रही है नॉर्दर्न लेबनान के ऊपर और वो कह रहे हैं जी कि हम अपने बंदों को वापस लेके नॉर्थ से आना चाहते हैं। इसके जवाब में हिजबुल्ला जो है उसने भी शुरू कर दिए हैं अटैक्स और हिजबुल्ला ने तो अब टारगेट जो है जो इनका कैपिटल है तेल अवीव उसको पहली बार लास्ट वीक जो है उसको हिट किया था। इससे पहले जो है वॉर सिर्फ इसके ऊपर बॉर्डर पे हो रही थी। और हिजबुल्ला का ये इसलिए उसने किया है कि हजारों ही लोग जो कि सदर लेबनान से भाग के गए हैं, ये जो 100 किलोमीटर की जो नॉर्थ ऑफ बॉर्डर, ये जो इनका एक शहर है मायसरा, उससे और उसमें ये क्योंकि फियर फैल गया था कि ये वॉर जो है आगे बढ़ेगी और लेबनान में नहीं रहेगी, आगे रहेगी। इसराइल की जो ये स्ट्राइक्स थी हिजबुल्ला, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि तेल अवीव पर अटैक किया, इसलिए क्योंकि उसकी जो स्ट्राइक्स थी उसमें 550 लेबनीज की डेथ हो चुकी है, 1800 जो है वो इंजर्ड हैं। ये समझा जा रहा है डेडलीएस्ट अटैक ऑन लेबनान सिंस द 2006 इसराइल हिजबुल्ला वॉर, और वॉर जो है अब और इंटेंसीफाई करती जा रही है। यूएस जो है वो भाग भाग के अपने अब डिप्लोमैट्स भेज रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये यूएस का बिल्कुल एब्सोल्यूट फेलियर है क्योंकि ये डी एस्केलेशन नहीं करा सके हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एमोस हॉटस्टीन्स जो हैं वो बाइडन साहब के स्पेशल एनवॉय वो यहां पे पहुंचे हुए थे 16 सितंबर को, और उन्होंने जब ये डेली एक्सचेंज चल रहा था फायर का तो उन्होंने बातचीत शुरू की थी, लेकिन उससे पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। और जिस दिन ये आए उस दिन भी एक बूबी ट्रैप्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो थी वो लेबनान के अंदर डेटोनेट हुई, जिसने कि सैकड़ों ही लोगों को इंजर किया, और ये समझा जा रहा था कि ये इसराइल ने कराया है। अभी जो लास्ट फ्राइडे अभी गुजरा है लास्ट वीक का, उसमें इसराइल ने बेरूत में के जो की जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर बॉम्ब्स मारे हैं और इधर सदर लेबनान में मारे हैं, जिसके के अंदर हिजबुल्ला का एक कमांडर जो था उसकी भी डेथ हुई थी। इसके अलावा सैकड़ों ही औरतों और बच्चों की भी डेथ हुई थी। अर्लियर दिस वीक इसराइल की जो मिलिट्री है उसने लेबनान के ऊपर जो हमला किया उसमें जो 492 लोगों की डेथ हुई थी उसमें विमेन और चिल्ड्रन अगेन थे, और ये जो कंडीशन है ये बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनकंडीशनल यूएस सपोर्ट फॉर इसराइल एंड इट्स फेलियर टू सिक्योर सीज फायर इन गाजा जो है वो बहुत ज्यादा बोल्ड करता जा रहा है इसराइल को कि वो वॉर को आगे 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 बढ़ाता चला जाए, और अब चीजें जो हैं दिन ब दिन खराब होती चली जा रही हैं। लास्ट वॉर जो लेबनान की हुई थी वो सिर्फ 34 डेज तक चली थी इन 2006, उसने मैसिव जो डेवस्टेशन है वो यहां पे लेकर आई थी, और अब जो है ये फिर से जब से लड़ाई गाजा में शुरू हुई है लेबनान के जो बॉर्डर्स हैं उस पे हिजबुल्ला और इसराइल की लड़ाई है। हिजबुल्ला के लीडर के जो डेथ हुई थी यहां पे हिजबुल्ला के कमांडर की, उसके बाद हिजबुल्ला के जो दूसरे लीडर हैं हसन नसरल्ला, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल जो अगर इसराइल हमारे अंदर आके डीपली हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, और हमारा ये बराज ऑफ जो मिसल्स हैं ये उनके ऊपर कंटिन्यू रहेंगे जिस वक्त तक जो है ये पीछे बिल्कुल नहीं हट जाते और गाजा के अंदर वॉर नहीं रोकते हैं, और जो नॉर्थ में हम कभी भी नहीं आने देंगे इसराइल को और उनके कभी बंदों को इधर सेटल नहीं होने देंगे जब तक ये सारा कुछ खत्म करके बाहर नहीं निकलते हैं पैलेस्टाइन से। जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट, उन्होंने भी लास्ट ईयर कहा था कि अब ये न्यू फेज ऑफ वॉर जो है ये यहां पे शुरू हो गई है और हिजबुल्ला के साथ, और अब हम अपने रिसोर्सेज जो हैं यहां पे कर रहे हैं। हम आपको एक दिखाते हैं, क्लिप दिखाते हैं, ये मेरे दोस्त हैं वहां पे जो है दुबई, वहां पे इनकी आप बात सुने क्योंकि इनकी फैमिली जो है अभी भी वहां पे है। इनका नाम है तारिक शिबारो, इनसे आप सुने कि क्या वहां पे हो रहा है और फिर हम आपको आगे रिपोर्ट जो है कंटिन्यू करेंगे।
माय नेम इज तारिक, लेबनीज बोर्न एंड रेज्ड इन बेरूत लेबनान। सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेबनान एंड इजराइल हैज बीन देयर for the past good 47 years, and the Hezbollah is a resistance that was born at that time to basically defend our land, and ever since then, while the resistance was growing, Israel also recognized that Hezbollah became a danger in that area. And that's why they were always seeking the help of the United States to get their military artilleries from there. You know, whether we like it or not, at least the resistance from our side is forbidding the aggression or the greed of Israel to come inside and terrorize people further in Lebanon, you know, more than what they're doing. My father is 86 years old. He is a true, loyal Lebanese who refuses to leave Lebanon, especially in times like these. Currently, he's undergoing kidney dialysis 3 times a week. And during these difficult times, it's very challenging for me to be able to make sure he goes to the hospital safely and come back home. Aside from the economic crisis that is there from in Lebanon, but we as Lebanese people, we were born with this, what you call resilience, you know? So it's something that is innate. It comes in the Lebanese DNA. We come from a broken country. Hence, we know what it feels like to be broken. But we also know how to stand up on our feet time after time after time after time. And this is what the Israelis fail to understand, because they're not used to it. You know, when they fall, khalas, it's a knockout for them. As opposed to Lebanese, and I'm not saying this only because I'm Lebanese, because it's a true testament to what we stand for, be it Lebanese or Palestinians for that matter. We've been there, done that over and over again, and we know how to get back up. Despite everything, if you look at the Lebanese people today, a lot of them are still okay. A lot of them are still going out. But more than anything, during these difficult times, Lebanese people are standing together. Be it Muslims, Sunnis, Shia, Druze, Christians, Catholic, Maronists, anyone from all political parties, we are all standing together against the aggression and the hostility of the Israelis. We are proud of being Lebanese. We are struggling, and it's going to be more challenging. But, you know, we're hoping with the pressure that we are putting, things will come to end very soon. But whatever it is, I think we are ready for anything. We've cheated death more than once. And, you know, it's fine. Let's see.
जी, तो ये आपने सुना जी तारिक शबारो क्या कह रहे हैं वहां पे. उनके अपने वालिद साहब जो है, अपनी फैमिली उनकी काफी सफर कर रही है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारी वो जो पुरानी नस्ल है वो उसमें से है जो कि अपना मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, और इसराइल को पता नहीं है कि चाहे लेबनीज हैं चाहे पैलेस्टीनियंस हैं वो कितने रिजिलियंट हैं, वो अपनी लैंड को कभी नहीं छोड़ेंगे, आखिरी अपने खून के खतरे तक जो है वो लड़ेंगे. लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने एक होप भी दी कि हम लेबनान में डरते नहीं हैं इसराइल की जो है वो फायरिंग से या उसके जो हमारे पे अटैक्स हैं. अभी भी लोग जो है वो बाहर जाते हैं और अपने डेली वर्क करते हैं. इसके ऊपर जो है आज दुनिया ने भी बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया है, और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसको फौरन रोकने की जरूरत है, खासतौर पर जो अरब कंट्रीज हैं, जैसे कि जो बड़े ही अब एम्बिशियस प्लान्स चला रहे हैं, जैसे कि यूएई है, कतर है, और जो सऊदी अरेबिया है खासतौर पे, बहरेन भी, ओमान भी, ये जो हैं बड़े अब बड़े बड़े मंसूबे बनाए बैठे हैं कि इनको चलना है, इनको बहुत ज्यादा खतरा है. इसीलिए आपने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी आज जो है कतर के अमीर ने भी बहुत ज्यादा इसको कंडेम किया. कल हमने आपको बताया था कि तैयब अर्दोगान साहब ने भी बहुत कंडेम किया था, क्योंकि तुर्की भी उसी रीजन के अंदर है. ये जो इन्होंने लोग इतने ज्यादा मार दिए हैं, उसके ऊपर जो नए आंकड़े आए हैं उसमें यह भी है कि जो हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर अटैक किया उसमें कोई 120 इसराइली सोल्जर्स मारे गए हैं, हंड्रेड जो हैं वो वुंडेड हैं. यानी कि ये 2006 से ये सारी लड़ाई जो है ये जो शुरू हुई हुई है ये उसकी वजह से है. आज यूएसए के अंदर एज वी स्पीक, आज थोड़ी देर पहले हैरल्ड स्क्वायर जो था न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, उधर मैसिव प्रोटेस्ट जो हैं वो वहां पे आए हैं. सैकड़ों ही जो हैं लोग वहां पे जमा हुए हुए थे, और उन्होंने आज फिर से एक दफा अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा है कि कंप्लीट आर्म्स एम्बार्गो जो है वो इसराइल के अगेंस्ट लगाया जाए. उनके हाथ में जो आज बैनर्स देखे जा रहे थे उसके ऊपर लिखा हुआ था हैंड्स ऑफ लेबनान, नो यूएस इसराइल वॉर ऑन लेबनान, हैंड्स ऑफ मिडल ईस्ट, फ्री पैलेस्टाइन. और उसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो बैनर नजर आ रहा था वो ये कह रहा था बाइडेन हैरिस ट्रंप बीबी नॉट वेलकम इन आवर सिटी. बीबी कहते हैं ये लोग नितिन याहू को, क्योंकि ट्रंप साहब बीबी कहते थे उसको, नितिन याहू को. तो आवर सिटी मीन्स न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क में ये लोग जो है हम उनको बिल्कुल नहीं जो है वो करेंगे. जितने भी आज अरब कंट्रीज के भी जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं और बाकी के भी जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन हैं कुछ कंट्री के हेड्स ऑफ द स्टेट, और जो मिडल ईस्ट के जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि इस वॉर को फौरन रोका जाए. अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे पास न्यूज रूम में रिपोर्ट आई थी वो फोर्ब्स की थी. फोर्ब्स मैगजीन आपको पता है दुनिया का वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस मैगजीन्स है. उसने कहा है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इजरायली मिलिट्री जो है वो एक पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन जो है लेबनान के अंदर करने वाली है, जिसके के ऊपर हिजबुल्ला के लीडर हसन नसरुल्ला ने उनको वार्न किया है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम अपनी कब्र खुद खोदोगे. तो ये जनाब चीजें जो हैं इंतहाई खतरे की तरफ जा रहे हैं और असी जड़े हैं दूध पी के सो रहे हैं. सो लेट्स होप कि ये चीजें जो हैं ये ठंडी होएं और कुछ सैनिटी प्रिवेल करे और कुछ ये जो लोग बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और ये और वो जो कि ना पैलेस्टीनियंस को ह्यूमन इस वक्त मान रहे हैं ना लेबनीज को ह्यूमन मांग रहे हैं, तो उन सबसे मैं ये कहना चाहती हूं कि आप जो बड़े ठेकेदार बनते हो ह्यूमन राइट्स के, आप जरा अपनी आंखें खोलो. ये भी ह्यूमन्स हैं जो वहां पर बस रहे हैं, उनका ख्याल करो और इसराइल को थोड़ा सा आप जरा खींचने की कोशिश करो, जरा उसको बोलो होल्ड योर हॉर्सेज, जरा उसको रोको एंड देन प्लीज गो टुवर्ड्स सॉल्यूशन. तो ये थी जनाब हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट.
जनाब बिल्कुल ये थी स्पेशल रिपोर्ट. आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी. एंड वेरी सैड सिचुएशन एंड वेरी हॉरिबल जिस तरीके से इसराइल जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और कोई भी उसकी लगाम
नहीं खींच रहा ना, कोई नहीं
तैयार नहीं है. दिस इज वेरी सैड, नॉट इवन द वेस्ट साइड, ऑन द अदर